नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम लोग श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 24वां अध्याय के श्लोक संख्या 5 शायद है। तो इसमें जैसे कि हम लोगों को पता है हर भाषा में दो तरह की चीज़ें होती हैं, गद्य और पद्य। तो ये जो संस्कृत इसमें जो है वो गद्य के रूप में है और इसमें जो 3 श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है तो उसको हम लोग को पढ़ेंगे। और श्लोक संख्या 8 में जो है वो प्रभुपाद ने कुछ समझाया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो शायद लिखा भी नहीं हो, ये चूँकि गद्य है तो ये आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो श्लोक संख्या 5 जो है, तथस्ताद यक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूत गणानाम विहार अयिनम अंतरिक्षम यवद वायु प्रवाति यन्मेघा उपलभ्यन्ते। इसका जो शब्दार्थ होगा, तथा अधस्तात सिद्ध चारण और विद्याधर लोकों से नीचे यक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूत गणानाम, यक्ष राक्षस पिशाच भूत इत्यादि के विहार अजिरम भोग विलास का स्थान, अंतरिक्षम अंतरिक्ष या आकाश में, यावत जहाँ तक वायु वायु प्रवाति बहती है, यावत जहाँ तक मेघा मेघ उपलब्धन्ते देखे जाते हैं। अनुवाद, अंतरिक्ष में विद्याधर लोक चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे यक्षों राक्षसों पिशाचों भूतों इत्यादि के भोग विलास के स्थान हैं। जहाँ तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं वहाँ तक अंतरिक्ष का विस्तार है, इसके ऊपर वायु नहीं है। श्लोक संख्या 6 जो है, तथा अधस्तात शतयोजन अंतरे इयम पृथ्वी यावत हंस भाष शेन सुपर्णादय पतित्रिप्रवरा उत्पतंती। तथा अधस्तात कृष्ण जय प्रभु कृष्ण, तथा अधस्तात कष्टप्दात इससे भी नीचे अर्थात विद्यालोक और चारणलोक के नीचे शत योजन 100 योजन अंतरे दूरी पर इयम यह पृथ्वी पृथ्वी यावत जितना ऊंचा हंस हंस पक्षी भास गिद्ध शयेन बाज सुपर्ण आदय तथा अन्य पक्षीगण पतति त्रिप्रवरा पक्षियों में श्रेष्ठ उत्पतंती उड़ सकते हैं। इति इस प्रकार। अनुवाद, यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 100 योजन लगभग 8 मील होता है, 800 मील योजन की दूरी पर ये पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा इतनी ऊंचाई तक है जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज तथा अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। श्लोक संख्या 7, उपवर्णितम भूमि यथा सन्निवेश अवस्थान अवेन अपि अधस्तात् सप्त भू विवरा एकैकांशो यो यान अत्यंतरेण विस्तारेण उपकल्पता अतलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पतालम इति। उपवर्णितम पूर्व कथित भूमे पृथ्वी का यथा सन्निवेश अवस्थानम विभिन्न स्थानों की योजना के अनुसार अवने पृथ्वी के अपि निश्चय ही अधस्तात नीचे सप्त सात भू विवरह अन्य लोक एक एक शह क्रम से ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा तक योजन अयुत अंतरेण 10,000 योजन के अंतर पर आयाम विस्तारेण चौड़ाई तथा लंबाई में उपकृप्ता स्थित अतलम अतल वितलम वितल सुतलम सुतल तलातलम तलातल महातलम महातल रसातलम रसातल पातालम पाताल इति। इस प्रकार ये सब निम्न लोक हैं। अनुवाद, हे राजन पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही गणना की गई है। श्लोक संख्या 8, एतेषु हि बिल स्वर्गेषु स्वर्गाद अपि अधिका काम भोगैश्वर्यानंद भूति विभूति भी सुसमृद्ध भवनोद्यान क्रीडा विहारेषु दैत्य दानव का द्रवेया नित्य प्रमुदितानु अनुरक्त कलत्र पत्यबंधु सुहृदनुचरा ग्रहपते ईश्वरादपि अप्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति। इसके शब्दार्थ जो हैं, एतेषु इसमें से जो इन लोगों का वर्णन किया गया है पाताल का, ही निश्चय ही बिल स्वर्गेषु अधः स्वर्ग लोकों में स्वर्गात स्वर्ग लोकों की अपेक्षा अपि भी अधिक बढ़कर काम भोग इंद्रिय भोग का सुख ऐश्वर्य आनंद ऐश्वर्य से उत्पन्न आनंद भूति प्रभाव विभूति भी वस्तुओं तथा संपत्ति से सुसमृद्ध उन्नत भवन घर उद्यान उपवन या बगीचे आक्रीड विहारेषु इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थलों में दैत्य दैत्य असुर दानव भूत प्रेत का द्रवेया सर्प नित्य शाश्वत प्रमुदित अत्यधिक प्रसन्न अनुरक्त लगाव के कारण कलत्र पत्नी को अपत्य संतान बंधु सगे संबंधी सुहृद मित्र अनुचरा अनुचर या सेवक गृहपतयः ग्रह स्वामी घर का मुखिया ईश्वरात देवताओं के तुल्य अधिक सक्षम जनों की अपेक्षा अपि भी अपतिहत कामा इनकी कामेक्षा रोके नहीं रुकती माया मायामय विनोदा जो सुख का अनुभव करते हैं निवसन्ति निवास करते हैं। इसका जो अनुवाद है, बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन सातों लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के वासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं और उनमें से बहुतों से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज माया में, भौतिक सुख में पूरी तरह मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोगों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। इस अनुवाद को आप लोग दोहरा सकते हैं। बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन सातों लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के वासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में पूरी तरह मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोगों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। तात्पर्य, कृष्ण कृपा श्री विग्रह जगतगुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रहलाद महाराज के कथन के अनुसार भौतिक सुख माया सुख कहलाता है। वैष्णव सदैव ऐसे झूठे सुख से जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भ्रमुद्वहतो विमूढ़ान। ये मूर्ख या विमूढ़ क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं, चाहे स्वर्गलोक हो या अधोलोक अथवा मर्त्यलोक। लोग सर्वत्र क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि यथा समय उन्हें भौतिक नियमों के अनुसार अपना शरीर बदलना होगा और जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के आवागमन में पड़ना होगा। अगले जन्म की परवाह किए बिना नितांत भौतिकतावादी अपने लघु जीवन काल में आनंद भोग करने में ही तल्लीन रहना चाहते हैं। ऐसे विमूढ़ भौतिकतावादियों को आध्यात्मिक आनंद का वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए वैष्णव सदैव उत्सुक रहते हैं। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम लोग को ये ज्ञात है कि श्रीमद् भागवतम को परमहंसों की संहिता कहा जाता है, परमहंसों का ग्रंथ। अन्य ग्रंथ भी हैं जैसे हम लोग जानते हैं, ब्रह्म संहिता, भृगु संहिता, जिसमें कि ज्योतिष के विषय में आपका भविष्य जीवन क्या होगा या पूर्व जन्म में क्या थे इसका ज्ञान है। तो ये भागवत ग्रंथ पूर्ण है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के विषय में है, ये कृष्ण कथा। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा है तारे देश। जिससे भी हम मिलें उनसे हम भगवान कृष्ण का उपदेश, भगवान कृष्ण की कथा उसके विषय में कहें, और जो ऐसा कहता है हमारे आज्ञा से वो इस देश का उद्धार कर सकता है। तो कृष्ण कथा दो तरह की हैं, श्रीमद् भगवद गीता जो कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निसृत हैं, और दूसरा श्रीमद् भागवत जो कि भगवान के भक्त या भगवान कृष्ण के विषय में है। तो ये पूर्ण ग्रंथ है। हम लोग भागवत में पहले देख चुके हैं किस प्रकार व्यास देव सब कुछ रचना करने के बाद खिन्न थे, तो नारद जी ने आकर उनको समझाया कि अभी तुमने भगवान कृष्ण का जो प्रत्यक्ष रूप से गुणगान नहीं किया है, अतः तुम्हें संतोष नहीं मिल रहा है, यद्यपि वैदिक साहित्यों की रचना तुमने कर दी है। तो नारद जी व्यासदेव के गुरु होने के कारण तत्काल ये उनको ज्ञात हो गया कि व्यासदेव क्यों दुखी हैं, क्यों खिन्न हैं। श्री प्रभुपाद एक प्रवचन में बोलते हैं कि गुरु जो है वो वैद्य हैं, वैद्य के समान हैं, और जिस तरह से इस भौतिक जगत में वैद्य रोगी की नाड़ी को देख करके बता देता है कि वो किस रोग से ग्रसित है या क्या उसका जो है औषधि चाहिए, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को देख करके उनके नाड़ी को देख के पहचान सकते हैं उनको क्या किस तरह का उनकी समस्या है। भगवद्गीता में हम लोग देखते हैं अर्जुन जो कि भगवान के अंतरंग सखा हैं, मित्र हैं, परंतु जब उन्होंने ये कहा कि शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, शादी शिष्य मतलब अनुशासन में रहे, आपकी शरण में हूँ प्रपन्नम, अब मुझे बताएं आप ब्रूही तन में कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने इन संबंधियों को जो हमारे युद्ध में युद्ध के इच्छुक हैं उनका वध करूं इस छोटे से पृथ्वी के टुकड़े के लिए। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी का क्या संबंध है, यदि त्रिभुवन की भी संपत्ति मुझे मिल जाए तो भी मैं उनके रक्त से अपने हाथ को नहीं मिश्र करूं। तो जब हमें समस्या होती है तब हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु उनका निराकरण करते हैं। तो भागवत में भौतिक ज्ञान भी पूरा है और आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में भी पृथ्वी मध्य में स्थित है, सात लोग ऊपर हैं, महर लोग, जन लोग, तप लोग, और जैसे इस श्लोक में प्रभुपाद हम जा रहे हैं कि सात लोग नीचे हैं जिन्हें बिल स्वर्ग कहा जाता है। बिल स्वर्ग मतलब जो निम्न स्तर के जो स्वर्ग हैं, जैसे हम संसार में भी देखते हैं जो होटल हैं कई तरह के होते हैं, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। 5 स्टार होटलों में सबसे अधिक सुविधाएं, सबसे अधिक जो व्यवस्था रहती है वो उच्चतर लोक हैं। उसी तरह से जो 3 स्टार या 2 स्टार होटल हैं वो निम्न स्तर के हैं, मगर दोनों का ही जो जन्म है, जन्मादिसे तो अन्वयाद, वो कृष्ण से हुआ है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मुझसे मत्तापमोहनम विस्मृतिम, मुझसे ही स्मृति आती है और मुझसे ही विस्मृति आती है। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों हमें इस अवस्था में डालते हैं कि हमें कृष्ण का विस्मरण हो जाए। तो शासन के रूप में शासन जो है एक विद्यालय भी बनाता है और एक कारागार जेल का भी निर्माण करता है। आप बोले जेल का निर्माण क्यों करता है? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्यालय शिक्षा लेने नहीं जाएंगे, उनके लिए कारागार है। उसी प्रकार कुछ ऐसे बहिर्मुख जीव हैं जो सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी जो भगवान की ओर नहीं मुड़ते, उनके लिए भगवान विस्मृति ये था मां प्रपद्यन्ते तात्वे भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः भगवद्गीता में। तो जिस प्रकार से हम को भगवान का हम भजन करते हैं, यथा मां प्रपद्यन्ते, मैं उनका वैसे ही स्मरण करता हूँ। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता हरे कृष्ण महामंत्र में जप करने में, कैसे करें बिना मन के। ठीक है, हमारे मन में और हमारे जिह्वा में अंतर है, परंतु कृष्ण का जो विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनके मन में और उनके जवान में कोई अंतर नहीं। वो आँख से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जिह्वा से सुन सकते हैं, प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके पहले के अध्याय में एक शिशुमार नक्षत्र का वर्णन है, ध्रुव लोक से संबंधित भी हैं, और सप्तऋषि जो हम लोग देखते हैं रात में जो परिक्रमा करते हैं ध्रुव लोक की, वो उसका जो परिमाण है लगभग वो 13 लाख योजन जो है वो उनसे ध्रुव लोक उनसे ऊपर है। और शिशुमार एक तरह से भगवान का हम लोग देख चुके हैं बाह्य रूप का वर्णन है, और योगीजन उनकी पूजा करते हैं। परंतु हम देखते हैं फिर गीता के अनुसार जैसे दो तरह के ज्ञान हैं, खगोल शास्त्र जो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, इससे संबंधित जो है। तो यद्यपि योगी जो हैं शिशुमार रूप की जो है वो पूजन करते हैं ध्यान करते हैं, परंतु भगवान ही गीता में कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मा श्रद्धावान भजते मां सहितुत्तमो मतः। सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी क्या है? जो श्रद्धापूर्वक भजताम मुझे भजन करते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि जैसे राहु जो हम लोग जानते हैं भगवान का, जब देवासुर इन लोगों ने जब समुद्र मंथन किया तो अमृत प्राप्त हुआ, और उसको भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के वितरण किया, परंतु उसमें से एक दैत्य जो था वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठे, तो उसको भी कुछ बूंद मिली, जबकि उन लोग चंद्रमा लोग लड़ रही है तो राक्षस है राक्षस है। वो देवताओं का वेश धारण करके राहु, भगवान ने उसको चक्र से उसको उसका सिर काट दिया। वो चूंकि अमृत की बूंदें अभी हम लोग जानते हैं इसमें आगामी महीने से ही कुंभ जो इलाहाबाद का 12 वर्षीय कुंभ पड़ रहा है, तो कुंभ में ऐसा मानते हैं कि उस क्षण में उस मुहूर्त में अमृत की बूंदें जो हैं वो छलकती हैं। कुंभ मतलब कहते हैं घड़ा, तो घड़े से, तो इसलिए उस स्थान का महत्व है। और हम लोग भक्तों के लिए इस्कॉन के विशेषकर भक्तों के लिए ऐसे पर्वों का महत्व है कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, प्रचार का बहुत अच्छा साधन। इतने लाखों मनुष्य एक जगह एकत्रित होते हैं, उनको ग्रंथ वितरण के द्वारा प्रसाद वितरण के द्वारा, इसलिए भक्त लोग जाते हैं। ठीक है, स्नान का भी महत्व है, परंतु भागवत के अनुसार जो केवल तीर्थों में यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, जो केवल स्नान करने के लिए जाता है, वहाँ जो साधु संत रहते हैं उनके मुख से उपदेश नहीं सुनते हैं, जो ये मानता है कि जन्मभूमि ही मैं हूँ, तो वो सैव गोखरा, वो गधे और गाय के समान। तो ये बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग को प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसलिए नहीं कि हम कुंभ का दर्शन करें, उस बहाने हमको प्रचार करने का, अभी हम लोगों ने इसी महीने जो गीता मैराथन जो हर वर्ष करते हैं उसमें ग्रंथों का वितरण किया, उसी प्रकार किसी बहाने हमें इन ग्रंथों का वितरण करना है। तो पृथ्वी से 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे जो यहाँ वर्णन किया गया है, तो ये सिद्ध लोक चारण लोक हम लोग देखते हैं कभी कभी शुभ अवसर पे, या जब भगवान प्रकट होते हैं तो पुष्पों की वर्षा करते हैं, तो इन लोग का जो स्तर है जीवन का, निश्चय ही मर्त्य लोक जहाँ हम लोग रहते हैं उससे श्रेष्ठ है। और इस मर्त्य लोक से जो निम्न स्वर्गीय लोक हैं बिल स्वर्ग, उनका भी स्तर ऊंचा जो पर बता रहे हैं। तो हम चाहे मर्त्य लोक से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, समस्या क्या है कि आप में बहुनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पे तेय कौंतेय पुनर्जन्म। चाहे हम ऊपर जाएं और चाहे नीचे जाएं, हमें फिर से इस मर्त्य लोक पे आता। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम शांति, पुण्य के प्रभाव पे हम उच्च लोकों में जा सकते हैं। फिर वही उदाहरण कि मेरे पास, मैं किसी होटल में जाता हूँ, जब तक मेरे पास लक्ष्मी है, पैसा है, हमको पूरी तरह से सुविधा मिलेगी। जब शेष हो जाएंगे तो वो कहेगा प्रबंधक के बाप इस छोड़ के जाइए। उसी प्रकार से पुण्य के प्रभाव से, पुण्य मतलब ऐसे सकाम कर्म, औषधालय खोलना, पेड़ लगवाना, ये सब हैं। यद्यपि ये जो ऐसे कर्म जो हैं ये हमारे स्थाई समस्याओं का अस्थाई हल कहना चाहिए। तो उनके प्रभाव से हम उच्च लोक में जा सकते हैं, परंतु फिर हमें फिर आना पड़ेगा। तो ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भौतिक सुख कृपा नहीं है। भक्त भगवान से ये नहीं मांगते, वो तो कहते हैं ठीक है कर्माणि निर्दयति किंतु भक्ति वायाम गोविंद मादि पुरुषम तमाम। भगवान अपने भक्तों का प्रारब्ध जो है नष्ट कर सकते हैं, परंतु भक्त ये नहीं चाहते। हम लोग देखते हैं उदाहरण में पांडव लोग, द्रौपदी, कुंती, गौरांगलीला में हरिदास ठाकुर, इतना उनको। और तो और हम देखते हैं श्री प्रभुपाद के जीवन में भी, प्रभुपाद ने जब गृहस्थ आश्रम में थे उन्होंने प्रयास किया दवाई का बिजनेस करने का। उनकी जो लखनऊ में जो फैक्ट्री है उसमें चोरी हुई तो उनको लाभ नहीं, मगर प्रभुपाद को जब ऐसा होता था तो भागवत का वही श्लोक यस्य अनुग्रहम करिष्यामि हरिष्य वितीर्णम्। भगवान कहते हैं मैं जिस पे अनुग्रह करूँगा उसका धीरे से धन जो है वो उसका हरण कर लेता हूँ। हरि भगवान का एक नाम है जो हरण करते हैं, तो भक्तों के लिए जो भक्ति में बाधक चीजें हैं उनका वो श्री कृष्ण हरण करते हैं। परंतु देवता का जो प्रभाव समझा रहे हैं वो यही चाहते हैं कि हमें भौतिक सुख प्राप्त हो, भौतिक सुख के लिए, और भौतिक सुख प्राप्त हो, और जो अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वो भी भौतिक सुख चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, निरोग चाहिए रोग ना हो तो सूर्य देवता को लोग कहते हैं जल चढ़ाइए। इसके कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, काम है ज्ञान है यंति अन्य देवता, जिनके ज्ञान जो है कामनाओं के द्वारा हरण कर लिया गया है वो अन्य देवताओं का पूजन करते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं कि हमें ये भक्तों की जो है कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है कि कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की सेवा ही कामना नहीं है। चैतन्य चरितामृत में ही आता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल या शान, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शान। जिनको भोग चाहिए भुक्ति कामी सिद्धि कामी, ये सिद्ध लोक का वर्णन है, मोक्ष चाहिए जो निर्विशेषवादी है निराकारवादी है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो कुछ चाहिए इसलिए वो अशांत रहते हैं। निराकारवादी लोग संसार को छोड़ करके भी वो जाते हैं, मगर फिर चूंकि भगवान कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय नहीं है वो फिर से संसार में लौट आते हैं, कभी चिकित्सालय खोलने, कभी इस तरह का तथाकथित कल्याण करने के लिए। भगवद गीता जो है वो भगवान हर लोक में कहते हैं। एक बार लंदन में 1975 की बात है, श्रील प्रभुपाद के लेक्चर में जो प्रायः जो महिला भक्तों प्रश्न नहीं करती, मगर कोई एक युवा भक्त थी, उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि डज कृष्णा स्पीक भगवद गीता टू हेलिश प्लैनेट्स, ये जो बिल स्वर्ग का से मुझे स्मरण आया कि क्या भगवान कृष्ण जो हैं वो नारकीय लोकों में भगवद गीता बोलते हैं, तो भगवान ने कहा हेलिश प्लैनेट, लंदन इटसेल्फ इज ए हेलिश हेल, बोले लंदन में देखो ना कहीं धूप आती है ना हमेशा बादल छाए रहते हैं, तो इससे अधिक और तुम्हें क्या हेल की या नरक की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण जो है, भक्त चाहे गृह था को वने था को सदा हरि बोले डाको, घर में रहें वन में रहें मगर भगवान का वो स्मरण कर सकते हैं। इसमें श्लोक में भी जो है कुछ शब्द महत्व के हैं, जैसे कि जो विभूति शब्द आया है भगवद गीता के द्वारा हम फिर जानते, विभूति योग एक अध्याय है, और जो भी अच्छे गुण या जो महान गुण हम देखते हैं वो कृष्ण के एक अंश से, अथवा बहुनितेन किन ज्ञातवा अर्जुन, भगवान कहते हैं कि तुमको बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी उत्पन्न है वो मेरे एक अंश से उत्पन्न हुआ है। माया जो क्रीड़ा क्रीड़ा मृग कहा गया है, गृहस्थों को बहुत ही सचेत रहना चाहिए, यदि हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं तो वही हम गृहस्थ के स्थान पर ग्रह मेधी बन जाते हैं। पत्नी संतान के साथ रहने में कुछ निषेध नहीं है, परंतु कलत्र संतान या पत्नी इनके साथ हम इस तरह से रहें, जैसे कि हम लोग जानते हैं ठाकुर भक्ति विनोद आदर्श गृहस्थ थे, उन्होंने लिखा भी है कि घर कैसा होना चाहिए, यदि निग्रह भजन देखी ग्रह दे गोलोक भय, जिस दिन घर में हम देखते हैं कि भजन कीर्तन हो रहा है वही घर जो है वो गोलोक, तो ये आश्रम है गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब जहाँ रह के हम कृष्ण का चिंतन कर सकें, नहीं तो ये जन जौवन पुत्र परिजन इथे किया से परिती रे, गोविंदा जी का जो भजन है बजाऊ रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे, नहीं तो फिर ये यौवन का धन का ये परिजन है इसमें हम जो इनका क्या हम क्या इनका विश्वास करें, लोग सोचते हैं कि ये हमारा पुत्र रक्षा करेगा, हमारे बेटे रक्षा करेंगे, हमारे संबंधी रक्षा करेंगे मृत्यु से, हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं कि जो हमारे माता पिता थे जो थे कहाँ चले गए, तो इस प्रकार से हमारा ये मिथ्या भ्रम भक्ति के सुख के लिए हम सोचते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे केवल कृष्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान कृष्ण जो हैं भक्तों में विश्वास रहता है कि भक्ति करने के लिए वो अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। सुहृद शब्द जो भी अभी आया है, तो वास्तव में हम सोचते हैं कि हमारे ये संबंधी हमारे हितैषी हैं, परंतु भगवान फिर गीता में समझाते हैं कि भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति इच्छति, कि मैं ही सबका हितैषी हूँ, सब भूतों का सब जीवों का, केवल कृष्ण ही जो हैं वही हर अवस्था में हमारा हित चाहते। इस संसार में आज हमारा कोई हितैषी है जब उसका स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है तो ये हमारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि ये संसार जो है सापेक्ष है, एक दिन हमारा मित्र है हितैषी है सुहृद है, अगले दिन वही हमारा शत्रु बन जाता है। तो लोग सोचते हैं कि मतलब एक दृष्टि से स्वार्थी हैं, परंतु स्वार्थ क्या है यह भी लोगों को ज्ञात नहीं है। प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो जानते ही नहीं है कि भगवान श्री विष्णु की शरण लेना यही वास्तव में स्वार्थ है, किसी अन्य के उसमें वो व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं हमारा ये स्वार्थ है। और शब्द जो है एक अप्रतिहता शब्द आया है, अप्रतिहता शब्द दोनों दृष्टिकोण से भक्तों के लिए भी, जैसे कि जो भागवत का श्लोक है सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, अप्रतिहता वही शब्द आया है, अप्रतिहता यातना सुप्रसिद्धति हेतुकी हेतुकी अप्रतिहता, मतलब भक्ति को आप रोक नहीं सकते, उसी प्रकार जो कर्मी लोग हैं उनके लिए भोग विलास वो चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं असीमित रूप से ये भौतिक सुख प्राप्त करना, जो कि अप्रतिहता रूप से वो भी संभव नहीं है। इस संसार में जो है कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कुछ समय उसका उत्पन्न होता है, उसका सुख है, उसके लिए हम कितना भी प्रयास करें वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, परंतु वो अस्थायी रूप से प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो एक शब्द और आया है ग्रह पतयः, ग्रह के पति, ग्रह के स्वामी। हम सोचते हैं कि हम ग्रह के स्वामी हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए यथार्थ दृष्टि से वो सेवक हैं। लोग कहते हैं राष्ट्रपति, परंतु वो राष्ट्र का सेवक है। उसी प्रकार जो गृहस्थ ग्रहपति हैं वो भले अपने को मुखिया माने, प्रमुख माने, परंतु वो सेवक है, उनको अपने परिवार की इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो वास्तव में सेवा वही है कि किस तरह से हम उनको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सकें, संतानों में इस प्रकार से हम संस्कार डालें कि वो भगवान के ओर उन्मुख हो सकें। अन्यथा जैसे बताया ग्रहमेधी, ग्रहमेधी नाम प्रहलाद महाराज ने भी समझाया है कि फिर एक शब्द जो आया है अंतिम लाइन में माया विनोदा, माया मतलब भ्रम, माया कहते हैं जो नहीं है। जैसे हम लोग के जो भगवत दर्शन है उसका क्या जो मुख्य जो कहना चाहिए नारा है, मुख्य जो उसका वक्तव्य है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण जो है सूर्य के समान है, माया जो है अंधकार है, और जहां कृष्ण है वहां माया का नहीं रह सकती। तो माया मतलब भ्रम। जैसे हम जीवों में भी चार दोष हैं, भ्रम, प्रमाद, कर्णपाटव और वंचना। हमेशा हम भ्रम में रहते हैं। जैसे सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम ये शरीर को अपना मान बैठे हैं। प्रमाद मतलब गलती करना, ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में त्रुटियां न की हों। कर्ण पाटव अपूर्ण इंद्रियां, कर्ण कहते हैं इंद्रियों को, अपटु मतलब जो अपूर्ण है। जैसे सवेरे सूर्य उदय होता है, हमें दिखता सूर्य इतना बड़ा है, तुम जानते हैं सूर्य कई गुणा पृथ्वी से अधिक है। और वंचना मतलब धोखा देना। प्रभुपाद कहते थे कि इस समाज में चीटर और चीटेड, विशेषकर भक्ति में भी और भौतिक विद्या में भी, जिनको कुछ नहीं आता वो जो है प्रोफेसर बन जाते हैं। जैसे मेरा भी वही प्रोफेशन है, हम लोग कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग, कूप मंडूक। जैसे मेढक बोलता है प्रशांत महासागर से आया दूसरा मेढक कि भाई कितना बड़ा है प्रशांत सागर, इतना बड़ा मेरे कुएं के बराबर, तो उसको डॉक्टर कूप मंडूक कहते हैं। भौतिक जगत में कोई शोध करता है, रिसर्च करता है, पीएचडी ले लेता है, वही अगला आदमी आता है वो कहता है उसने गलत किया है और उसको उस पर पीएचडी मिल जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पीएचडी मतलब प्लाऊ, जैसे किसान जो है हल चलाता है उसको जमीन को बराबर करता है, उसी प्रकार से ये तथाकथित ज्ञान जो है भौतिक होगा, वही ज्ञान एक व्यक्ति उस पर उपाधि प्राप्त करता है, अगला व्यक्ति आता है उसको गलत सिद्ध करने में उपाधि प्राप्त करता है। तो तात्पर्य में भी कई शब्द हैं, वो संक्षेप में क्योंकि समय हो रहा है, कि मेन वही है माया सुख चपल सुख एव लागी रे, भजन हो रही मन श्री नंदनंदन, वही गोविंदा जी का भजन है। वैष्णव का विशेषकर प्रभुपाद ने समझाया है कि उनका ये उद्देश्य है कि वे इस जीवात्मा को कैसे मुक्त करें। सबसे बड़ा उपकार यही है लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण करना। प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका तो उन्होंने रास्ते में जो कविता लिखी कि माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाई सुखी, वैष्णवर इच्छा पूर्ण है। वैष्णव की एकमात्र इच्छा ये रहती है कि जितने भी इस संसार में दुखी लोग हैं माया के जो लात खायाची, माया लाती खायाची जन्म जन्मांतरे, उसमें फिर आजी पुनी सुयोग है यदि जोगा योग तबे पारे तुम्हें मिली वारे, तुम्हारे मिलाने भाई अबारा शिव सुख पाई गोचारणे घोरी दिन भोर, कतो वने छुटा पुटी वने खाए लिटा पुटी सही दिन कवि हर मोर। प्रभुपाद कहते हैं हमारा कब वो दिन होगा जब हम वन में लोट पोट करेंगे। तो वैष्णव तभी प्रसन्न होते हैं जब इस जीवात्मा को सुखी कर सकें, और इस भौतिक जगत में जैसे प्रभुपाद ने समझाया है, विमूढ़ लोग हैं, एक मूढ़ होता है गधा और एक विमूढ़ महागधा, गधे का भी गधा, जैसे भगवान गीता में समझाते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जो मूर्ख जो महागधा लोग हैं वो समझते हैं कि मैं एक मानुष मनुष्य के समान हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे इस प्रकृति का पता नहीं है कि मैं सभी लोगों का महेश्वर। भगवान खुद ही कहते हैं भोक्ता राम तपसाम, यह अस्थाई है। भक्त लोग जो हैं मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, परंतु वैष्णव दार्शनिक कहते हैं कि जगन मिथ्या नहीं है, जगत अस्थाई है। यदि ब्रह्म सत्य है, पेड़ से फल, पेड़ सत्य है तो फल भी सत्य है, पर ये जो है वो अस्थाई है। तो वैष्णवों का एकमात्र कर्तव्य ये है कि किस तरह से वो लोगों को सुखी करें। श्रील प्रभुपाद ने 1975 में फिर एक पत्र में मुझे लिखा था कि न केवल तुम, जब मैंने भारत से प्रचार करना चाहा तो सब लोगों ने ये कहा कि क्या आवश्यकता है एक ब्राह्मण समाज बनाने की, क्या लाभ होगा, तो कोई उसमें जो रुचि किसी ने प्रदर्शित नहीं की। परंतु बोले फिर भी गुरु और कृष्ण की हमारे यहाँ जो उद्देश्य है गुरु और गौरांग को संतोष देना, तो उनके आदेश से हम लोग ये लोगों को कृष्ण का उपदेश बताएंगे। तो वैष्णव का एकमात्र ध्येय जो हम लोग सवेरे वंदना भी करते हैं कि वांछा कल्पतरु भ्रष्य, तो कृपा सिंधु है, तो वास्तविक कृपा भौतिक सुख नहीं, वास्तविक कृपा है किस तरह से संसार सब जेल है इससे मुक्त करा देना। हमेशा वो यही मानते हैं किस तरह से भगवान को उसमें हम रक्षा कर सकते हैं, उनके अगले जन्म की चिंता नहीं है। इस संसारिक लोग की पशु बुद्धि है, वध खाने में कसाई खाने में खड़े हुए हैं, आराम से घास खा रहे हैं, अगला पशु की गर्दन कट गई हमारा नंबर भी है, मगर कोई चिंता नहीं है, ये पशु बुद्धि है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए। तो और भी कुछ बिंदु हैं परंतु समय हो रहा है, किसी कोई शंका या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स या। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद्भागवत की जय।